सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा और आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और पत्रकार विशाल दहिया।
नमस्कार, आकाशवाणी में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। आज इस कार्यक्रम में हम खास चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा पर, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम।
धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज अर्जेंटीना पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किन किन मुद्दों पर खास नजर रखी जाएगी और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उनकी जानकारी के लिए आइए सुनते हैं प्रसार भारती के संवाददाता मनीष की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री की औपचारिक गतिविधियां अर्जेंटीना के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नायक जनरल होजे दे सान मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से शुरू होगी। जनरल सान मार्टिन दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अर्जेंटीना, चिले और पेरू को स्पैनिश शासन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। बातचीत में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाला है।
जितेंद्र त्रिपाठी जी, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा लगभग 57 साल बाद हो रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अर्जेंटीना की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री 57 साल बाद पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना, अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें, ICT की बात करें, शेल गैस रिजर्व्स की बात करें, लिथियम की बात करें, तो काफी महत्वपूर्ण देश है, काफी स्ट्रेटेजिक देश है। इस यात्रा के दौरान क्या वो खास बातें रहेंगी आपके लिहाज से, जिन पर कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स, कुछ सकारात्मक नतीजे दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के नजरिए से देखने को मिल सकते हैं?
देखिए विशाल जी, मेरे विचार से ये विजिट जो हो रही है, इतने दिनों तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट वहाँ नहीं हुई। बहरहाल, देर आया दुरुस्त शायद, अब अगर ये हो रही है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अर्जेंटीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पूरे परिक्षेत्र में दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना दो सबसे बड़े देश हैं, और अर्जेंटीना के साथ हमारे रिश्ते जो हैं काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर क्या चीज डिस्कस होगी, देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेड एंड हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, ICT और डिजिटल इनोवेशन वगैरह। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध, व्यापार के संबंध, डिफेंस के संबंध और उत्तरोत्तर बढ़ सकते हैं। आप एक इसी चीज से देख लीजिए कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के बाद लिथियम का सबसे बड़ा भंडार रखता है। लिथियम का उपयोग हमारे यहाँ बैटरीज में होता है, टेलीफोन्स में होता है, इसीलिए सारी दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ के लिए पीछे दौड़ रही है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज, वहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड इतना ज्यादा है, उससे हम फायदा उठा सकते हैं। हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांसफर में हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई चीजें ऐसी जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जिस तरह से भारत में डिफेंस के क्षेत्र में या फिर स्पेस के क्षेत्र में प्रगति हुई है, उसका फायदा अर्जेंटीना को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को भारत के कई क्षेत्रों का फायदा मिल सकता है। जैसे डिफेंस में प्रगति हुई है, जो सॉफ्टवेयर में प्रगति हुई है, जो प्रगति हुई है डिजिटल पेमेंट में, उसमें फायदा मिल सकता है। और हमें एक और चीज भी मिल सकती है कि अर्जेंटीना चूंकि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी कोने तक, वहां पर से हमें अपने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भी केंद्र स्थापित करने की संभावना हो सकती है,
यानी कि स्पेस के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये आपने जिक्र किया दक्षिण अमेरिका का, साउथ साउथ कोऑपरेशन जिसकी बात होती है, उस लिहाज से भी अगर अर्जेंटीना को एक एक मैप पे नजर डाल के देखी जाए तो काफी महत्वपूर्ण देश है।
जी, साउथ साउथ के हिसाब से आप देखिए तो अर्जेंटीना और ब्राजील दो को अगर मिला लीजिए तो 80% से ज्यादा लैटिन अमेरिका कवर हो जाता है। अर्जेंटीना का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल से करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर कम है, हमारा 32 के करीब, उनका 27.कुछ है, और पॉपुलेशन जबकि उनकी कम है, लेकिन हम पूरा उतना बड़ा खित्ता कवर कर ले रहे हैं दक्षिण अमेरिका का। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और वहाँ पर 15-16 देश उधर हैं और सेंट्रल अमेरिका में कुछ है, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा तो कॉन्टिनेंट हमारा कवर हो जाता है उसमें।
एक और महत्वपूर्ण बात होती है त्रिपाठी जी, जब भी हम दो देशों के आपसी संबंधों की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है, और वो पहलू है जो दोनों देशों के लोग हैं उनके बीच कैसे संबंध है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ भी यात्रा होती है, जहाँ ऑफिशियल विजिट जो होती है, उसमें उनका जो भव्य स्वागत होता है उसमें प्रवासी भारतीय वहाँ जो रहने वाले हैं उनकी भीड़ लगातार हमने देखी है किस तरह से उमड़कर सामने आती है। अर्जेंटीना में भी ऐसा ही वाकया देखने को मिला। तो प्रवासी भारतीयों के लिहाज से अगर देखा जाए, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं, वो कितना मजबूत है दोनों देशों के बीच और उसमें क्या कुछ नए आयाम खुल सकते हैं?
देखिए विशाल जी, मेरे ख्याल से इसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि अभी जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो कम है। भारत से वहाँ पर सिर्फ 2,500 के करीब लोग हैं जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, 2,500 के करीब हैं। इतने बड़े देश से सिर्फ 2,500 की जनसंख्या में वहाँ लोग हैं तो ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक संख्या नहीं है। और वहाँ पे कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति की बड़ी मान्यता है। योग हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत हुआ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य हुए, ये सब वहाँ सिखाए जाते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयरस में आपका इंडोलॉजी की चेयर है,
यानी कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बहुत गुंजाइश है।
और भारत के तो तमाम वहाँ पर आईसीटी के जितने भी आप नाम ले लीजिए, इंफोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल हुआ, इन सब के वहाँ ब्रांचेस हैं।
जी, तो आपने अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राजील का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री अर्जेंटीना के बाद सीधे ब्राजील पहुंचेंगे, वहां पर ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे और ब्राजील के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है हमारे उसको लेकर भी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा जिक्र ब्राजील और ब्रिक्स समिट का भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ब्राजील में भारत के राजदूत भाटिया जी, उन्होंने क्या कहा प्रसार भारती से बात करते हुए, एक बार वो भी सुन लेते हैं।
करीब 57 वर्ष के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की ब्राजील में स्टेट विजिट होने वाली है और इस समिट में दोनों लीडर्स राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ करके कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक राजनीतिक चर्चा तो होगी, उसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, रक्षा क्षेत्र की बात होगी, माइनिंग मिनरल्स की बात होगी क्योंकि ब्राजील के पास में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुतायत है यहाँ पर, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे कई मुद्दों पर यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में बात होगी।
जितेन जी, ब्रिक्स को एक नजरिए से अगर हम देखने और समझने की कोशिश करें तो पिछले कुछ सालों में एक तो ब्रिक्स के जो मेंबर नेशंस हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और कई और देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज की तारीख में जो वैश्विक राजनीति की जो स्थिति है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स जैसा प्लूरीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें कई सारे बड़े देश शामिल हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और भी कई देश जुड़े हैं, इंडोनेशिया भी सबसे नया देश था जुड़ने वाला, क्या महत्ता है ब्रिक्स की आज की तारीख में वैश्विक पटल पर?
देखिए विशाल जी, मेरे विचार से ब्रिक्स का महत्व इसी बात में हो जाता है कि ब्रिक्स एक कम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने देखा है, ये अनुभव रहा है, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो हैं वो इनमैनेजेबल हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस हो, नॉन अलाइन मूवमेंट हो, राष्ट्रमंडल हो, इतने बड़े 60, 70, 150, 200 की मेंबरशिप वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें किसी चीज पे निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस बातचीत होती रहती है, लोग अपने दिल का गुबार निकालते रहते हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे पे, खासतौर से महत्वपूर्ण मामलों में पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि जो छोटे या मध्य साइज के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ब्रिक्स हुआ, SCO हुआ, G20 हुआ, ये जो है यहाँ पर एक कोहरेंट बातचीत होती है, वो ज्यादा अच्छा होता है। और आप जैसा कह रहे हैं कि कम से कम 32 देश ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए लाइन में भी लगे हैं, मुझे डर यह है कि ये 42, 50, 60 तक पहुंचेगी, इसका भी तब कहीं हसर वही राष्ट्रमंडल या नॉन अलाइन जैसा न हो जाए।
लेकिन जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना प्रभाव भी बढ़ेगा, उतनी बातचीत भी होगी, खासतौर पे सदस्य बनना चाहते हैं जो देश, वो साउथ साउथ कोऑपरेशन में या फिर ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन में भारत की उनके साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
हाँ, प्रभाव बढ़ेगा और इसके साथ साथ यह है कि उनकी साख बढ़ेगी, उनका दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी विश्व की अर्थव्यवस्था का 35% से जो ज्यादा ब्रिक्स से आ रहा है, 40% के करीब जनसंख्या ब्रिक्स से आ रही है और 4-5 बड़े बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से, रूस, चीन, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो ये तो होगा, लेकिन मैं कॉशन ये देना चाहता हूँ कि ब्रिक्स को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले समय में वो उन बुराइयों से न जूझे जिनसे राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र या नॉन अलाइंड मूवमेंट जूझ रहा है।
जी, भारत के नजरिए से अगर इसे देखा जाए त्रिपाठी जी, तो भारत जब ऐसे बड़े पटलों पर अपनी बात रखता है, चाहे वो G20 में हमने देखा कि कितना बेहतरीन भारत के अध्यक्षता में जो G20 की बैठक अभी हुई पिछले साल, और उसके अलावा G7 में भारत मेंबर देश नहीं है लेकिन फिर भी उसको लगातार 12 बार से जो है स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया जा रहा है, SCO में भारत ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं, और अब ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो जो वैश्विक स्थिति है, खासतौर पे कई जगह युद्ध की स्थिति है, कई जगह युद्ध रुक गया है, ट्रेड को लेकर और टैरिफ्स को लेकर यानी कि व्यापार के क्षेत्र को लेकर, आर्थिक मुद्दों को लेकर बहुत ही उथल पुथल चल रही है, तो ऐसे समय पे भारत आपको लगता है कि जो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से एक बार फिर से एक बड़ी ताकतवर आवाज बड़े सार्थक सुझावों के साथ एक बार अपनी बात सामने रख सकता है?
देखिए, ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो अभी सारी की सारी ग्लोबल साउथ की है। रशिया G8 का मेंबर हुआ करता था, रशिया को निकाल दिया तो उसको आप अभी साउथ में मान सकते हैं, तो सारी ग्लोबल साउथ की मेंबरशिप है, और ऐसे में भारत अपनी बात न सिर्फ ब्रिक्स के पटल पे बट ब्रिक्स के माध्यम से और दूसरी जगह भी रख सकता है। हालांकि इसमें एक फिर चेतावनी की बात है कि ब्रिक्स का मेंबर चीन भी है। चीन आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और क्षेत्रफल के रूप से भारत से बड़ा है, और चीन की जो ऋण की कूटनीति है वो सब जानते हैं, तो वहाँ पर चीन का प्रतिकार करना जरूरी हो जाता है। अब कम से कम गनीमत यह है कि ब्रिक्स में अभी जितने भी फैसले होते हैं मेजॉरिटी से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से होते हैं।
जी, आपके लिहाज से ये जो 17वीं ब्रिक्स बैठक हो रही है, समिट बैठक जो हो रही है, इसमें किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, तो आपको लगता है कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो विवादास्पद मुद्दा ये है डीडॉलराइजेशन का। ब्रिक्स के देशों में से काफी सदस्य जो हैं वो इस बात को मान चुके हैं कि डॉलर में बिजनेस करने के बजाय हम एक नई करेंसी में बिजनेस करें। भारत ने इसका विरोध किया है आंशिक रूप से। भारत ने ये कहा है कि नई करेंसी में नहीं, हम इंटरचेंजेबल म्यूचुअल करेंसी में भी करेंगे और डॉलर में भी कर सकते हैं। भारत के लिए मजबूरी है कि डॉलर अभी भारत का काफी ज्यादा बिजनेस अमेरिका के साथ जो है डॉलर में है और विश्व में भी कई देशों के साथ है, तो इसलिए हम डॉलर को एकदम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमने ये कहा कि हम म्यूचुअल एक्सेप्टेबल करेंसी में करेंगे बिजनेस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो भारत के लिए ये सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा इसमें होगा। फिर भारत इसमें निश्चित ही आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा और चीन से इस बात के लिए एक तरह से अलिखित स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की जाएगी कि आतंकवाद के मामले पे पाकिस्तान को लेकर के चीन न केवल चुप है बल्कि चीन उसका परोक्ष रूप से समर्थन भी करता है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के 1269 रेजोल्यूशन में जो आतंकवादियों की लिस्ट होती, चीन ने कई बार कोशिश की पाकिस्तान के पक्ष में वीटो किया, तो ये क्यों, कब तक आखिर? तो
मतलब ये एक और फोरम होगी जहाँ पे भारत जो है अपनी बात खासतौर पे आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से सामने रख पाएगा, और ग्लोबल साउथ के जो बाकी देश हैं जो या तो परोक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, उनका समर्थन भी भारत को,
और एक क्लाइमेट का भी होगा।
जी,
क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि देखिए पेरिस समझौते या उसके बाद के में जो भी ये कहा गया था कि साहब आप $100 बिलियन का आप एक फंड बनाएंगे जिससे विकासशील देशों को नई टेक्नोलॉजी लेने में मदद मिले, क्योंकि आप एक और कहते हैं कि आप कोयले का उपयोग बंद कर दीजिए, नई टेक्नोलॉजी से काम कीजिए, पोल्यूशन फ्री कीजिए, दूसरी ओर आप कहते हैं नई टेक्नोलॉजी जब हम मांगते हैं तो आप कहते हैं नई टेक्नोलॉजी हम इसलिए नहीं दे सकते कि वो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में है, आपको खरीदनी पड़ेगी, तो गरीब देश क्या करेगा? इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसा कोई फंड बने जहां से गरीब देश किटी में से पैसा निकाल
सके। बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको उतनी ही मदद भी करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को अगर ढंग से टैकल करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा और आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में